آمين يا رب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ کل کا آپ کا روزہ ایک شعوری روزہ بنا ہوگا، اور آپ نے ہر کام کو کانشیسلی مائنڈ فلنیس کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی اپنا قرآن پڑھنا، اپنی نماز پڑھنا، سحری افطاری، سب کچھ آپ نے شعور کے ساتھ کیا ہوا. کیا آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ میں کیوں کر رہی ہوں اور میں اسے کیا چاہتی ہوں؟ تو تھرو آؤٹ دا ڈے آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو محسوس کر سکتے ہیں پھر، اور یہی اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ سارا دن ہم اپنے اندر ایک خوشی کا احساس پائیں کہ میں تو سب کچھ اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں، اور اب میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے. تو اپنی نیکیوں کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے اس سے. اور جیسے آپ نے اگر اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں نماز کیوں پڑھ رہی ہوں، مجھے اسے کیا ملے گا، تو سب کے جواب مختلف ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، ثواب لینا، میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ یہ نماز میرے لیے آخرت میں نجات بن جائے، یہ سب جواب ہو سکتے ہیں. لیکن اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو یہ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو پکارتا ہے کہ لوگوں اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا، تو نماز کو ہم یہ سمجھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ وہ پانی ہے جس سے میں اپنے گناہوں سے جلائی بھی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں. آپ دیکھیں گے اس سے نماز میں کافی فرق آئے گا. اسی طرح جب نفل نماز یا سنتیں پڑھنے میں سستی آئے، سنت کا کوئی کام کرنے میں سستی آئے، اس لیے کہ انسان فوراً سوچتا ہے نا کہ یہ کوئی فرض تو ہے نہیں، فرض کو پھر بھی ہم پورا کر لیتے ہیں، مگر سنت کی ادائیگی کے وقت بس ایسے خیالات آ جاتے ہیں، بعد میں کر لوں گی، اس یہ کون سا فرض ہے، خیر ہے اس کی. تو نہیں، اس وقت بھی جیسے مجھے جب ایسی کوئی سستی آنے لگتی ہے تو میں اپنے آپ سے یہ کہتی ہوں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کون سی نیکی کی مجھے ضرورت پڑ جائے قیامت کے دن، اس لیے کہ اس دن ہر ہر نیکی قیمتی ہوگی. مثلا آگ جلی ہوئی ہے کہیں اور آپ کو کتنا پانی چاہیے، آپ تو کہیں گے بالٹیاں بھی لے آؤ، شاور بھی لے آؤ، مگ میں پانی لگ سکتا ہے وہ بھی لے آئے، ہر کوئی پانی لے کر آئے، کیونکہ آگ کو بجھانے کے لیے کتنا پانی درکار ہے آپ کبھی بھی کمی نہیں کریں گے. یہ نہیں ہمیں پتا کہ واقعی کون سی ایک نیکی ہے کہ جو ہمیں اس دن جب ترازو میں نیکیاں اور بدیاں تو لی جائیں گی تو اس دن وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے. ہو سکتا ہے، ہمیشہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں اور مجھے کوئی ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے، تو ہو سکتا ہے یہ وہی ہو، ہو سکتا ہے یہ سبحان اللہ کہنا وہی ہو، ہو سکتا ہے یہ سنتیں وہی ہوں جو کام آ جائیں اس دن جب نیکیاں اور بدیاں برابر ہونے لگیں. تو اس لیے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ تو انسان سستی اختیار کر لیتا. اور یہ مہینہ تو وہ ہے کہ نفل بھی فرضوں کے برابر کاؤنٹ ہوتے ہیں، کہیں فرضوں کی کمی بیشی ہو گئی تو یہی نفل کام آئیں گے، یہی سنتیں کام آئیں، سنتیں بھی نفل ہی ہیں. جیسے کہ حدیث میں ہے نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا، اگر نماز سنت کے مطابق ہوگی تو بندہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوگی تو ناکام ہوگا. اور پھر آگے حدیث میں اگر بندے کے فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفلی عبادت ہے، اگر ہوگی تو نفلی عبادت سے، نوافل سے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر باقی اعمال کا حساب کتاب شروع ہوگا. یعنی پہلے نماز کا حساب، پھر باقی اعمال کا حساب. اور نماز میں بھی اب پتہ نہیں ہے ہمارے فرائض کون سے والے ایسے ہیں جو واقعی اس قابل بھی تھے کہ وہ ایکسیپٹ ہوتے، اور کون سے ریجیکٹ ہو جائیں گے، या कौन से फराइज में कभी जिंदगी में कमी कर दी। मैं अपनी पास्ट की जिंदगी जब नहीं समझ होती तो पता नहीं था, हो सकता है कई फराइज छोड़ दी हो। तो उस वक्त फिर कयामत के दिन नवाफिल से कमी को पूरा किया जाएगा। खास तौर पे मैं उन लोगों से कहूंगी कि जिन्होंने बलूगत के बाद फौरन नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ी भी, वो तो जरूरी नवाफिल का एहतमाम करें, इसलिए कि फिर वो कैसे उस कमी को पूरा करेंगे। तो ऐसी बातें सोचने से ना इंसान की सुस्ती जाती रहती है, इसलिए कि उसको ये समझ आ जाती है कि मुझे कितनी जरूरत है इन नेकियों की भी। सिर्फ फराइज से शायद मेरा काम ना चल सके वहां, तो मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करूं। क्या कयामत के दिन के लिए सिर्फ इतना सा काफी होगा कि हम ये टकरें जो हैं, ये टूटे फूटे आमाल जो हैं, बस लेके चले जाएं तो और हम सोचें कि बस हमारी निजात हो जाएगी। तो इतना खतरे का दिन है कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा लेकर आए ताकि बचत हो सके, इसलिए कि कोई भी वहां पे तो ऑप्शन दूसरा है ही नहीं सिवाय जन्नत के, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन तो फिर जहन्नम है जो हम सह नहीं सकते। तो फिर कोई चीज हमें उठाती क्यों नहीं, कोई चीज हमें जगाती क्यों नहीं, क्यों नहीं हम सुस्ती को दूर कर देते ये सोच के कि वो एक बड़ा दिन आने वाला है, उस दिन मुझे ये सारी नेकियों की जरूरत होगी, क्योंकि सिवाय नेकी के और कोई चीज नहीं है जो मेरे आमालनामे में तुल के मुझे जहन्नुम से निजात दे दे। मेरा जेवर, मेरा कपड़ा, मेरे घर, मेरी जायदादें सब यहीं रह जाएंगी, वो तो नहीं तुलेंगी आमालनामे में। मैं कितनी मशहूर थी, मेरे कितने फैंस थे, मेरी फॉलोइंग कैसी थी, ये कुछ भी नहीं तुलेगा। एंड ऑफ द डे मेरी नेकी ही तुलनी है, और अगर उसमें ही सुस्ती कर दी तो कौन सी चीज मुझे उस दिन बचाएगी। लिहाजा जब इस सोच के साथ इंसान रहता है ना, तो नेकियां करनी भी आसान हो जाती है। आप देखें दूसरा पारा आपने पढ़ा होगा दोहरा कुरान में, उसकी आयत 148 में क्या है कि नेकियों में सबकत करो, मुकाबले का असल मैदान ही नेकी है। ये कपड़ों, जेवरों, गाड़ियों, घरों के मुकाबले ये तो आज बहुत कॉमन नजर आते हैं, मगर ये कुछ भी आपको देंगे नहीं अगर मुकाबला करना नेकी में आगे बढ़े। क्योंकि हर चीज का हमने आगे जवाब देना है। तो जब भी आपको सुस्ती आने लगे तो ये सोच लें कि हमें ये कहा गया कि नेकी में सबकत ले जाओ, नेकी में दौड़ो, आगे बढ़ो ताकि अल्लाह ताला की जन्नत पा लो। तो मैंने मेरे तो आमाल एक दिन तुलने हैं तराजू में, मेरी नेकियां कहीं कम ना हो जाए। अगर एक भी कम हो गई तो मेरे लिए क्या है फिर, वहां पे तो मैं वापस जाके कोई नेकी भी नहीं कर सकूंगी। और आज नेकियां कितनी आसान है, कितनी आसान है, जैसे कि मैं आपको बताती जा रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी आपको इस प्रोग्राम में बताती रहूंगी कि किस तरह आप 1,000 नेकियां कमा सकते हैं, 1,00,000 नेकियां कमा सकते हैं, हज उमरे का सवाब कमा, या आपने कर आपको जो नेकी बताई थी, इसी तरह और बेशुमार नेकियां हैं जिनसे इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि लाखों नेकियां मिल जाएंगी, मगर तवज्जो उनकी तरफ बहुत कम है। हमें वो ऐसे ही बिखरी हुई नेकियां लगती हैं, क्योंकि हमें मुश्किल काम जो हैं वो लगते हैं कि हाँ इनसे तो कुछ मिलेगा, ये तो छोटी सी से क्या फर्क पड़ता है, या फिर हम ये सोच लेते हैं कोई बात नहीं ये तो बाद में ही कर लेंगे। अल्लाह हू अकबर, अगर इनके जरिए हम जहन्नम की आग से बच सकते हैं तो ये कोई भी बड़े काम नहीं, ये तो बहुत ही थोड़ा है जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर डाला है। इतनी बड़ी आग को जो हमने अपने गुनाहों से जला ली भी है, जो कोयला बना सकती है हमें, उसके लिए ये नेकियां पानी का काम देंगी। उनको बुझा लें, उस आग को बुझा लें आज मेरे और आपके पास जहां से। देखिए जो जो भी आप में से इस वक्त मेरी आवाज सुन रहा है ना, वो शुक्र अदा करे। किस बात का? इस बात का कि वो जिंदा है, वो जिंदा है इसीलिए सुन रहा है ना। क्या ये इतनी बड़ी नेमत है? जी हाँ, इसलिए कि जिंदा हैं तो नेकी कर भी सकते हैं, जिंदा हैं तो तौबा कर सकते हैं, जिंदा हैं तो अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं, जिंदा हैं तो अपने गुनाहों की आग को बुझा सकते हैं, जिंदा हैं ही तो जिक्र कर सकते हैं ना, जिंदा हैं ही तो दुआएं कर सकते हैं ना। और जब जिंदगी नहीं होगी तो ये सारा सिलसिला बंद हो जाना। नेकियां तो फिर भी इसी तरह बिखरी पड़ी होंगी, रमजान भी आएंगे, एक एक नेकी पे कई गुना अजर भी मिलेगा, लेकिन अगर मैं ही ना हुई तो दुनिया जहान चाहे नेकियां समेटती रहे, मुझे इससे क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा? मेरे पीछे से चाहे सारी दुनिया जन्नती हो जाए, अगर मैंने ही अपने लिए नेकी का सामान इकट्ठा नहीं किया तो सारी दुनिया का जन्नती हो जाना मुझे कोई फायदा नहीं देगा। लिहाजा अपनी कश्ती को मजबूत बांध लें, क्योंकि समंदर बड़ा ही तूफानी है। आपकी कश्ती क्या है? आपकी नेकी, आपका अमल। ये जितना मजबूत होगा कयामत के दिन के तूफान में, उतने ही आप बेहतर पोजीशन में रहेंगे, सरवाइव कर सकेंगे। वरना कयामत का तूफान इतना बड़ा है कि इसमें तो बड़े बड़े गिर जाएंगे। तो अपना इंतजाम मजबूत करें, क्योंकि देखने वाले की नजर बड़ी बारीक है, वो बड़ा बारीक बीन है, उसने दिलों के अंदर तक झांक लेना। अहोस्सिलमा फिस सुदूर। तो सुस्ती नहीं करनी, हर चीज को शऊर के साथ करना है, माइंडफुलनेस। सारा दिन इसी तरह गुजारना है, बार बार खुद से सवाल करने। अब देखें, आते हैं अमल की तरफ। छोटे छोटे अमल हैं, छोटे छोटे, कब कोई 1 मिनट में होने वाला है, कोई चंद सेकंड में होने वाला है, कोई 2 मिनट में होने वाला है। ऐसे हम फोन पे देखें कितनी ही देर गुजार देते हैं, लेकिन ये नेकियां हमें क्यों भारी लगने लगती हैं? हमारी अपनी सुस्तियां हैं ना, कोताहियां हैं, या शायद हम इनको इतनी अहमियत नहीं देते। हमारे नजदीक शायद ये कोई वर्थ ही नहीं है। उनकी वर्थ तो पता चल जाएगी, जो ही आंख बंद होगी ना पता चलेगा कि ये नेकियां कितनी कीमती थी, मैंने क्यों ना समेट ली। बड़ी हसरत होगी फिर। तो आज की जो अमल है, छोटा सा अमल, वो ये कि कोशिश करें जब भी आप बाथरूम जाएं तो वुजू करके ही निकले। इससे क्या मिलेगा? हम अपने आप से सवाल करें ना, इससे क्या मिलेगा मुझे? देखिए, जब जब आप वुजू करेंगे तो वुजू के पानी के जो कतरे हैं उनके साथ इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं। सोचिए, ये वुजू का पानी जब हमारे फेस पे लगता है तो जो नीचे गिर रहा है, इन कतरों के साथ मेरे गुनाह आंखों के, नाक के, मुंह के, ये गिर रहे हैं। कानों का मसा किया, कानों के गुनाह झड़ गए, हाथों पैरों के झड़ गए, सर के झड़ गए। तो वुजू करने लगे, सुस्ती आए, खुद सोचें, पूछें अपने आप से क्यों कर रही हूं, जवाब दें अपने आप को, अपने गुनाह को धोने के लिए। और वैसे भी अल्लाह ताला के महबूब बंदे तहारत का एहतमाम करते हैं, तो साफ सुथरे लिबास में रहे, सारा दिन नाइट सूट में ना घूमते फिरे कि हमें कौन सा आज किसी ने देखना है, कौन सा किसी ने आना है। और खास तौर पे नमाज के वक्त, जैसे मसलन आपने जोहर से कुछ देर पहले आप बाकायदा तैयारी करने के लिए उठ खड़े हो, कोशिश करें कि अगर हल्का सा शावर ले लें फिर अपने रब के हजूर हाजिरी देने आए। तो जब जोहर में आपने ये तैयारी कर लिया, असर मगरिब में इस तैयारी के साथ रहेंगे, आपने साफ सुथरा लिबास पहन लिया, आपने नहा लिया, अब आप उसके बाद बस वुजू पे वुजू करें। एक वुजू के ऊपर दूसरा वुजू करना भी, यानी पहले से आपका वुजू बेशक है, उसके ऊपर दूसरा और वुजू करेंगे तो सवाब मिलेगा। और इसी तरह हम अगर अपने दिन को डिवाइड कर लेना, मैं इंशाल्लाह ताला आपको हर पार्ट के लिए इबादत का बताऊंगी कि कैसे आप उसको भी इबादत से डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्होंने माशाल्लाह अपने घरों को रमज़ान के लिए डेकोरेट किया है, बच्चों को दिखाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इबादत से भी तो अपने वक्त को डेकोरेट कीजिए। इबादत असल डेकोरेशन है, इससे अपने रमज़ान को खूबसूरत बना लें। तो अगर आप अपने दिन को तकसीम कर लेंगे ना, जैसे एक इबादत आपकी जागने से लेकर, और हम उम्मीद सब रखते हैं कि हम सहरी से कुछ देर पहले ही जागते हैं, ठीक है? तो जागने से लेकर सहरी तक की एक इबादत हो गई। फिर नंबर टू में एक और खाना है, नंबर टू फजर की नमाज और उसके बाद की इबादत। फिर नंबर थ्री इशराक से लेके, क्योंकि हमने इशराक पढ़ी है, जोहर तक की इबादत। फिर नंबर फोर जोहर से असर तक की इबादत। फिर असर से मगरिब की इबादत। फिर मगरिब से ईशा की इबादत। फिर ईशा से लेके सहरी तक की इबादत। अब ये जो सारे खाने हैं ना, इनको हमने फिल करना है, ठीक है? अब इसकी मैं हर दिन आपको बताती रहूंगी कि किस वाले खाने में आपने क्या चीज़ डालनी है। अगर ये अभी एम्प्टी है तो इंशाल्लाह इनको डेकोरेट करना, और हर खाने को डेकोरेट करेंगे तो पूरा दिन डेकोरेटेड होगा, पूरा दिन खूबसूरत होगा। अरे अल्लाह, जब हमारा अमल तेरे सामने पेश हो तो हमारा दिन ऐसे ही खूबसूरत हो। और आप जानते हैं, आज का दिन वही है जिस दिन आपका अमल अल्लाह ताला के सामने पेश होना। मंडे और थर्सडे को इंसान का अमल अल्लाह ताला के आगे पेश होता है। तो सोचें, अगर हमारा दिन खूबसूरत होगा इबादत से, तो कितना प्यारा होगा जब अल्लाह ताला के आगे पेश होगा। कितनी खुशी होगी कि मैं जो दिन भेज रही हूँ अल्लाह ताला के आगे, वो बहुत ही खूबसूरत है। वो आपने पूरी एफर्ट के साथ उसको बड़ा खूबसूरत बना के भेजा है। और अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारी कोशिश ही तो देखनी है कि कोशिश बंदा कितनी करता है, ठीक है? आपकी कोशिशें जितनी दिल लगा के होंगी, जितने शौक से होंगी, वो उतनी ज्यादा अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा होंगी। क्योंकि हर एक की कैपेसिटी डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है, स्केड्यूल डिफरेंट है दिन का। तो सभी कोशिश ज़रूर करें। आसान आसान चीज़ें इसमें बताऊंगी जो कि सभी कर सकते होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अब आपको जैसे मैंने बताया कि जुहर में आपने थोड़ी देर पहले उठ के, यानी आपको पता है जब नमाज का टाइम है, तो थोड़ा सा पहले उठ के आपने हल्का सा शावर ले लिया और चेंज कर लिया, तो आप बिल्कुल फ्रेश हैं आप जुहर की नमाज के लिए। तो एक तो ये आपने थोड़ा सा एहतमाम कर लिया। अब इसी तरह हम नमाजों में कयामुल लैल को हमने ऐड किया। पहले हम कयाम नहीं भी अगर करते थे, तो रमज़ान में हम कयाम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि तरावी कयामुल लैल है, इसी तरह तहज्जुद भी कयामुल लैल है, जिसको आखिरी हिस्से में आप पढ़ते हैं सहरी से थोड़ी देर पहले उठ के। और मैं जिस टाइम जोन से आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त, यहाँ भी इस वक्त यही टाइम है जो सहरी का वक्त है। और इस वक्त में जितनी आप आहोजारी कर सकें अल्लाह ताला के आगे, जितनी आप गिरियाजारी कर सकें उतना ही बेहतर है। जितना है आप अल्लाह ताला के सामने रो रो के अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ कर सके, उतना ही अच्छा है। इसलिए कि ये वो टाइम है जिसके खास तौर पे अल्लाह ताला ने कुराने पाक में जिक्र फरमाया है कि वो लोग, उन लोगों की तारीफ फरमाई है, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, जो सहरी के वक्त इस्तिगफार करते हैं। सिर्फ ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ते हैं, इस्तिगफार करते हैं, सहरी के वक्त उठ के अपने गुनाहों पे रोते हैं, शर्मसार होते हैं, अल्लाह ताला को बड़े प्यारे हैं। तो ये बड़ा खामोशी का वक्त होता है, ये बड़ा ही सुकून का वक्त होता है, जिसमें आप अल्लाह ताला के आगे अपने गुनाहों को रखे और इसकी माफी मांग सकते हैं। तो इस वक्त आप चाहे दो नफल पढ़े और उसके बाद वितर पढ़ लें। अब आप इसके बाद बस दुआओं पे जोर दें। अब जितनी देर सहरी भी मनाते रहें, उतनी देर भी इस्तिगफार ही करते रहे। इसके अलावा कुछ सुन्नतों को हम ऐड करेंगे अपने दिन में। वैसे उम्मीद है कि आप लोग तमाम लोग सुन्नत मौकेदा तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। सुन्नत मौकेदा कौन सी सुन्नतें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एहतमाम के साथ पढ़ी हैं, कभी उनको छोड़ा नहीं, जिनमें दो सुन्नत फजर से पहले, चार जुहर से पहले, दो जुहर के बाद, फिर मगरिब के बाद दो, फिर ईशा के बाद दो, ये कुल 12 सुन्नतें बनती हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं छोड़ी। ठीक है, अब कुछ सुन्नतें ऐसी भी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार पढ़ते थे, बहुत ज्यादा उनका एहतमाम नहीं किया, बहुत पाबंदी नहीं की, लेकिन हम भी आगे पीछे तो नहीं पढ़ते, लेकिन इन गैर मौकेदा सुन्नतों को भी हम कम से कम रमजान में जहां हमें मौका मिले हम शामिल कर सकते हैं। देखिए, अगर पता होगा तो कभी शामिल करेंगे ना, अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो आज वो पहली सुन्नत मैं आपको बताती हूँ, जो आप जोहर से असर के दरमियान जो, या असर से मगरिब के दरमियान वाला जो खाना है ना, इसके अंदर ये आप सुन्नत रखें। और इस टाइम को जहां हमने असर की नमाज तो पढ़नी है, असर का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले चार सुन्नत। और इसकी खसूसियत क्या है, इसकी क्या फजीलत है, क्यों पढ़ूं? ये देखिए, हम एक फौरन आप सवाल करें, क्यों पढ़ूं, क्या मिलेगा मुझे इससे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम फरमाए जो असर से पहले चार रकत पढ़े, जिनको मुयस्सर हो, ठीक है ना, जो जो पढ़ सकता है। अब सारा रमजान अगर आप नहीं भी पढ़ सकते, कम से कम किसी किसी दिन पढ़ लें, जिस दिन भी आपको टाइम मिलता उस दिन पढ़ लें, जो पढ़ सकते हैं सारे रमजान पढ़ लें, तो आप ऐड कर लें ये एक गैर मौकेदा सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी पढ़ी थी, तो ये रमजान में कम से कम असर के चार फर्जों से पहले ये चार सुन्नत पढ़ लें। तो आपको मैंने मौकेदा सुन्नतें बताई। देखिए, इनमें ईशा से पहले की चार सुन्नतें नहीं है, ना मौकेदा में है ना गैर मौकेदा में। हाँ, वैसे नफल पढ़ सकते हैं, इसी तरह आप मस्जिद जाते हैं तो आप तहियतुल मस्जिद पढ़ें। तहियतुल मस्जिद पढ़े बगैर आप कभी मस्जिद में ना बैठे, जब मस्जिद आपने जाना है ना, जब भी अपने मर्दों को भी बता दे कि बैठने से पहले तहियतुल मस्जिद पढ़ना, इसके बगैर नहीं बैठ सकते आप मस्जिद में। ठीक है, आज की जो दुआ है वो है जो हमारी सबसे बड़ी मांग है। वैसे तो मैं जो कल भी मैंने आपको दुआ बताई थी ना, शिर्क से बख्शिश मांगने की, शिर्क से अल्लाह की पनाह में आने की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है, उसको कभी ना छोड़िएगा। ये दुआएं आपको भेज दी गई हैं, आप लोग इसको प्रिंट करके रख लें ताकि ये आपकी एक तरह की दुआ लिस्ट बन जाए। कम अज़ कम इफ्तारी से पहले आप ये सारी दुआएं इंशाअल्लाह ताला मांग ले। तो शिर्क वो गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुराने पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला किसी गुनाह को भी, जिसको वो चाहे माफ कर सकता है, मगर शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। तो इसलिए इस दुआ को आपने नहीं छोड़ना जो मैंने आपको कल बताई थी। और आज की भी जो दुआ है वो इसलिए इतनी मुफीद है कि हमें सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश चाहिए कि हमारे गुनाहों को वो दरगुजर कर दे, मिटा दे। हमारे गुनाह अल्लाह ताला के और हमारे दरमियान जो चीज हायल होती है ना, वो हमारे गुनाह है। गुनाहों की बड़ी नहुसत है, इस जिंदगी में भी नहुसत होती है, बरकतें उठ जाती हैं, अल्लाह से दूरी होती है, नेकियों का दिल नहीं करता, नेकी में दिल नहीं लगता, सुस्ती होती, ये गुनाहों की नहुसतें हैं। कुछ भी याद करना चाहे वो याद नहीं रहता, ये गुनाह है जो हमारे हमें अल्लाह ताला से दूर कर दे। तो इस माहे मुबारक में याद रखें, अगर किसी की बख्शिश ना हो सकी ना, अगर किसी की बख्शिश ना हो सकी, वो तबाह हो गया। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपके नबी ने फरमाया है। और इसे पता चलता है कि अल्लाह ताला उससे इतना ज्यादा नाराज है कि इस रहमतों वाले महीने में भी उसको बख्शा नहीं उसने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया वो जिसको रमजान का महीना मिला और वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। लिहाजा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगनी है, बहुत मांगनी, कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, बस इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। तो किन अल्फाज के साथ माफी मांगे? देखिए अल्फाज तो वैसे आप अपनी जुबान में भी बोल सकते हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, लेकिन जो मसनून अल्फाज है ना बड़े जामे हैं और उनके साथ उनकी फजीलत भी बताई गई है। अब मैं कहूँ अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, इसकी वो फजीलत नहीं है, हालांकि ये भी माफी है, ठीक है आप दिल से जब भी माफी मांगेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे जो आज की मैं आपको अल्फाज बता रही हूँ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को माफ कर देता है, नहीं सिर्फ माफी नहीं बल्कि ऐसे गुनाह भी, अगर वो मैदाने जंग से भी भागा हुआ है तो अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देता है। अगर वो ये कलेमात कहता है यानी कबीरा गुनाह भी उसने किया है ना अगर, तो उसकी भी माफी इन अल्फाज से हो जाती है, क्योंकि मैदाने जंग से भागना कबीरा गुनाह है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रात के आखिरी पहर में आप ये दुआ जरूर मांगे, मैं अपने लिए भी यही दुआ करती हूँ इस पहर में और अल्लाह ताला से आपके लिए भी यही दुआ करूंगी, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी, मेरे साथ साथ आप बोल सकते हैं, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। क्या है मैंने कहा? ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ठीक है, तो मैं माफी चाहती हूँ अल्लाह से, वो अल्लाह कि नहीं कोई इलाह मगर वो ही, वो हई और कयूम है, और मैं तौबा करती हूँ इसके हजूर। ये इसका तर्जुमा है, आपको अपनी लिस्ट में ये दुआ मिल जाएगी, इसको शामिल रखिए सहरी के वक्त में, खास तौर पे इसको करिए ताकि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमा दे और जिसको माफी मिल गई उसके वारे न्यारे हो गए, वही कामयाब है। तो इसलिए ये हमारी जो दुआएं हैं ना उनकी कबूलियत के रास्ते में भी हायल हो जाते हैं हमारे गुनाह, इसलिए बख्शीश बहुत मांगे। और आज आप सबसे एक और दरख्वास्त करूंगी कि आप में से किसी का भी मैंने कभी दिल दुखाया हो, और इंसान है, हो सकता है कभी किसी को टाइम ना दिया हो सकता है, कभी किसी के साथ बात करना चाहता हो नहीं मुझे मौका मिला हो, जानबूझ के तो कभी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, अनजाने में, मगर हो सकता है ज़रूर किसी के साथ दिल आज़ारी किसी की हो गई हो और उसने मुझे ना बताया हो, मुझे पता हो तो मैं खुद माफ़ी मांगने को तैयार हूँ लेकिन मुझे पता नहीं। तो आप में से किसी के दिल में भी कोई भी बात हो तो मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, और आप इसलिए माफ़ करते कि अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। किसी को कोई मेरी बात बुरी लग गई हो सकता है, कभी काम करते हुए खास तौर पे जिनके साथ काम करते हैं आप या डीलिंग होती है तो कभी भी कुछ ऐसी बात हो सकती है, तो अल्लाह ताला आपको माफ करे। देखें कितनी बड़ी बात है ना ये कि इब्ने मसूद फरमाते हैं सुबहान अल्लाह कि हम में से कोई भी रमजान को का इस्तकबाल इस तरह करने की कभी जुर्रत नहीं कर सकता था कि उसके दिल में कीना हो। कहते हैं हम रमजान को कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हमारे दिल में कीना हो, कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो नए चांद का इस्तेमाल करने की जुर्रत इस हाल में करता हो कि उसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए जर्रा बराबर कीना हो। तो हम भी हर कीने को ही निकाल दें, किसी के लिए भी ना कुछ रखें दिल में ऐसी बात जिसे जो हमारी दिल को मैला कर दे। तो ये सहाबी रसूल की बात है, हमें भी अपने दिलों को साफ करके इस महीने में रहना चाहिए और दरगुजर कर देना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे माफ हमें माफ कर दे। आज का जो जिक्र है बहुत ही प्यारा जिक्र, बहुत ही आसान जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब बंदा ये अल्फाज कहता है तो अल्लाह ताला इसकी तस्दीक करता है कि मेरे बंदे ने सच कहा। हम भी चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी ये फरमाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि क्या हम जो यहाँ पे बैठ के ये जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला की बातें कर रहे हैं, अपनी नेकियों को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या ये भी कोई हमारी इबादत है? तो इसमें आपको एक वाक्या बताती हूँ। एक मरतबा हज़रत अबू मूसा अशरी ईशा की नमाज के बाद हज़रत उमर के पास आए। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, अबू मूसा रात के इस पहर वो कौन सा काम है जो आपको यहाँ ले आया? फरमाया, कुछ इल्मी मुजाकरा करना, जैसे हम ये इल्मी मुजाकरा कर रहे हैं इसके लिए मैं आया। तो अबू मूसा रात तक देर तक बैठे रहे और आपस में वो ये इल्मी बहस मुकालमा करते रहे। फिर फरमाया, अब नमाज पढ़ लेते हैं, यानी तहज्जुद की। तो उमर ने फरमाया, हम नमाज में ही हैं, यानी ये जो इल्मी मुजाकरा हम कर रहे हैं ये भी नमाज की, यानी ये भी एक इबादत है। तो फरमाते, फिर हम इल्मी मुजाकरे में मशगूल होकर, तो ये भी एक इबादत है। मगर अगर आप चाहें, जैसे सुनते सुनते आप साथ अल्लाह ताला का जिक्र भी कर सकते हैं, तस्बीह कर सकते हैं, जो आपको तस्बीह बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, और भी आपको इंशाल्लाह बताती रहूंगी, तो आप वो भी साथ साथ जारी रखें। ठीक है, अपने हर वक्त को आप अपनी तस्बीहात के साथ मुजयन कर लें। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर कल मुलाकात होगी। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।